अध्याय 13 भाषा विज्ञान का ज्ञान की अन्य शाखाओं से संबंध। ऐसे तो ज्ञान अखंड और अनंत है तथा जिज्ञासा के क्रम में एक स्थल ऐसा आता है जहां शास्त्र और विज्ञान के काल्पनिक भेद समाप्त हो जाते हैं और वे एक में मिल जाते हैं, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से उनके भेद को स्वीकार करना अधिक सुविधाजनक है। कुछ शास्त्र और विज्ञान ऐसे हैं जो सापेक्ष और अन्योन्याश्रित हैं, उनमें परस्पर उपकार्योपकार भाव संबंध है। कुछ शास्त्र या विज्ञान ऐसे भी हैं जिनमें कोई साक्षात और स्पष्ट संबंध नहीं है, उदाहरणार्थ रसायन और काव्यशास्त्र। रसायन पढ़ने से काव्यशास्त्र के ज्ञान में कोई लाभ होने की संभावना नहीं है। इसी प्रकार वनस्पति विज्ञान का अध्ययन भाषा विज्ञान के अध्ययन में सहायक नहीं हो सकता, अथवा अर्थशास्त्र के ज्ञान से भौतिकी का ज्ञान समृद्ध नहीं होगा। ये विषय परस्पर निरपेक्ष तथा असंबद्ध जैसे हैं, किंतु ज्ञान की ऐसी अनेक शाखाएं हैं जो परस्पर सापेक्ष ही नहीं एक दूसरे की पूरक भी हैं। एक के ज्ञान के बिना इतर का ज्ञान अधूरा रहेगा। उदाहरण के लिए इतिहास और राजनीति को या राजनीति और अर्थशास्त्र को लीजिए। राजनीति से प्रेरित घटनाओं द्वारा इतिहास का निर्माण होता है और ऐतिहासिक घटनाएं बाद की राजनीति का दिशा निर्देश करती हैं। इसी प्रकार बहुत बार राजनीति का निर्माण अर्थशास्त्री कारणों से होता है, इसलिए यदि इनमें एक को भी ठीक से समझना है तो दूसरे विषयों का ज्ञान अनिवार्य होगा। अपने आप में कोई भी पूर्ण नहीं है। वस्तुतः इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र आदि में एक एक का ज्ञान दूसरे का साधक और उपकारक है। इन्हें बहुत कुछ अन्योन्याश्रित भी कह सकते हैं। एक के बिना दूसरे की सम्यक धारणा नहीं हो सकती। तो स्पष्ट है कि ज्ञान के कुछ विषय परस्पर सापेक्ष होते हैं और कुछ निरपेक्ष। कुछ का ज्ञान दूसरे विषयों के ज्ञान के लिए उपादेय तथा आवश्यक होता है और कुछ का नहीं। इस दृष्टि से विचार करने पर भाषा विज्ञान का भी कई अन्य विषयों से साक्षात संबंध दिखता है जिनका ज्ञान भाषा विज्ञान के लिए आवश्यक है। साथ ही भाषा विज्ञान भी उन विषयों के ज्ञान को परिष्कृत और समृद्ध करता है। तात्पर्य कि एक ओर जहाँ भाषा विज्ञान दूसरे विषयों पर प्रकाश डालता है, वहीं दूसरी ओर उनसे स्वयं प्रकाश ग्रहण भी करता है। इस सापेक्षता की दृष्टि से भाषा विज्ञान के साथ अग्रलिखित विषयों का संबंध निरूपित किया जा सकता है। पहला, मनोविज्ञान भाषा विज्ञान। भाषा का संबंध विचारों या भावों से है, अर्थात भाषा विचारों या भावों की अभिव्यक्ति का साधन है। व्यक्ति पर्यावरण अथवा परिस्थिति से प्रभावित होता है और उस प्रभाव की अभिव्यक्ति प्रतिक्रिया के रूप में होती है। वह प्रतिक्रिया मानसिक, शारीरिक अथवा वाचिक हो सकती है। अप्रिय बात देखने या सुनने पर हमारा मन क्षुब्ध और खिन्न हो जाता है, जो हमारी मानसिक प्रक्रिया का परिणाम है। कहीं से हमारे पैर पर यदि आग का एक कण आ गिरे तो हम अविलंब पैर हटा लेते हैं। यह हमारी शारीरिक प्रतिक्रिया है। बहुत बार हमारी प्रतिक्रिया वाचिक ही रह जाती है। किसी की अभिनंदन परक वाक्य पर मुस्कुराकर प्रसन्न स्वर से कुछ कहना, किसी के क्रोध करने पर कटु उत्तर देना, हमारी सहज वाचिक प्रतिक्रियाएं हैं जिनका संबंध मन से है। तात्पर्य यह कि भाषा का तब तक उच्चारण होगा ही नहीं जब तक कोई विचार या भाव मन में नहीं उठे, और कहने की आवश्यकता नहीं कि विचार या भाव का संबंध मन यानी मस्तिष्क से है, जिसका अध्ययन मनोविज्ञान का विषय है। अतः मनोविज्ञान जाने बिना भाषा के सभी पक्षों का पूर्ण विवेचन संभव नहीं है, क्योंकि किसी शब्द का हम पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है और क्यों प्रतिकूल, यह सोचने की चीज है। आप कितने सुंदर हैं, यह सुनकर हमारा मन खिल उठता है, और आप कितने मूर्ख हैं, यह सुनकर मन खींचता ही नहीं, क्रुद्ध भी हो जाता है। सुंदर और मूर्ख शब्दों में इतनी बड़ी शक्ति है। इन शब्दों का मन पर ऐसा प्रभाव, एक अनुकूल और दूसरा प्रतिकूल क्यों पड़ा, इसकी व्याख्या मनोविज्ञान ही कर सकता है। स्वभावतः शब्दों द्वारा यथाभिलषित प्रभाव की उत्पत्ति के बिना मनोविज्ञान की जानकारी आवश्यक है। भाषा की उत्पत्ति का आधार तो मनोविज्ञान ही है, उसकी परिसमाप्ति भी मनोविज्ञान में ही होती है। अर्थात जब वक्ता किसी उद्देश्य से किसी वाक्य का प्रयोग करता है तो वह श्रोता में तदनुरूप प्रतिक्रिया उत्पन्न करना चाहता है, जो श्रोता द्वारा अबार्ध अर्थबोध के अनंतर ही उत्पन्न होती है। तात्पर्य कि वक्ता के मन यानी मस्तिष्क से प्रेरित अर्थभाषा के माध्यम से श्रोता के मन यानी मस्तिष्क तक पहुंचकर तद्रूप भाव उत्पन्न करता है। इस तरह भाषा वक्ता और श्रोता के मन यानी मस्तिष्क को एक सूत्र में बांधने का माध्यम है। सच पूछिए तो मन के अभाव में भाषा की न तो उत्पत्ति संभव है और न ग्रहण। इसीलिए अविकसित चेतना संपन्न जीवों में भाषा का विकास नहीं दिखता। अर्थ परिवर्तन के कारणों की अच्छी तरह समझने के लिए भी मनोविज्ञान का परिचय अपेक्षित है। क्यों एक शब्द के अनेक अर्थ हो जाते हैं, क्यों कालांतर में किसी शब्द का अर्थ बदल जाता है, यह सब जानने का साधन मनोविज्ञान ही है। अर्थ परिवर्तन के कारणों पर विचार करने के प्रसंग में हम देखेंगे कि किस प्रकार मनोवैज्ञानिक कारणों से अर्थ नियंत्रित होते हैं। इससे स्पष्ट है कि मनोविज्ञान और भाषा विज्ञान का बड़ा अंतरंग संबंध है। दूसरा, शरीर विज्ञान भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान का शरीर विज्ञान से गहरा संबंध है। भाषा के लिए कम से कम दो व्यक्ति आवश्यक हैं, एक वक्ता और दूसरा श्रोता। कभी कभी मनुष्य अकेले अपने आप भी बोलता है, किंतु वह सामान्य स्थिति नहीं है। वक्ता और श्रोता की दृष्टि से निम्नलिखित प्रक्रिया अनिवार्य है। वक्ता श्रोता, मनोविज्ञान शरीर विज्ञान, भौतिक विज्ञान शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान। प्रथमतः वक्ता के मन में विचार उत्पन्न होता है, तब वह विचार वागेंद्रियों की सहायता से अभिव्यक्त होता है, फिर वायु तरंगों से श्रोता के पास पहुंचता है और उसके कर्ण कुहरों में प्रवेश कर मन यानी मस्तिष्क तक जाता है, जहां उसकी सार्थकता का बोध होता है। इस प्रकार वक्ता से श्रोता तक पहुंचने में तीन प्रक्रियाएं काम में आती हैं, ध्वनन, प्रेषण और ग्रहण। ध्वनन या उच्चारण का संबंध ध्वनि के निर्माण पक्ष से है और ग्रहण का उसके बोध पक्ष से। मन में उत्पन्न भाव वागेंद्रियों की सहायता से कैसे अभिव्यक्त होते हैं, यह ठीक ठीक कहना उसी के लिए संभव है जो वागेंद्रियों की रचना, स्थिति और कार्य से अवगत हो। किस तरह फेफड़े से निकली हुई वायु स्वर तंत्र, कंठ, तालु, नासिका, विवर आदि स्थानों से टकराकर विभिन्न ध्वनियों का रूप ग्रहण करती है, यह शरीर की रचना और क्रिया के ज्ञान से संबद्ध है। वही वायु कहीं क बन जाती है और कहीं च, कहीं द तो कहीं व, कहीं स्वर तो कहीं व्यंजन, कहीं अनुनासिक तो कहीं अनुस्वार। यह शरीर विज्ञान से परिचित व्यक्ति अच्छी तरह समझ सकता है। एक बड़ी मनोरंजक बात यह है कि जिन्हें वागेंद्रिय कहते हैं वे वस्तुतः वागेंद्रिया नहीं हैं, उनका प्राकृतिक उपयोग दूसरा है। जैसे होठ मुख विवर के फाटक हैं, अगर ये फाटक बंद नहीं रहे तो कोई भी चीज मुंह के भीतर चली जाए और स्वास्थ्य ही नहीं प्राणों के लिए भी घातक बन जाए। इसलिए ये फाटक सामान्यतः बंद रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर ही खोले जाते हैं। दांत भोजन के लिए छुरी और सिलका काम करते हैं। आगे के दांतों से हम भोजन को काटने का काम लेते हैं और बगल के दांतों से उसे चबाकर पीसने का। यह कटाई और पिसाई भोजन को पचाने के लिए अनिवार्य है। जीभ का काम स्वाद को ग्रहण कर भोजन की खाद्यता और अखाद्यता का निर्णय करना है। यदि जीभ न हो तो अखाद्य वस्तुएं भी पेट में चली जाएं। फेफड़े का काम है श्वास प्रश्वास की क्रिया द्वारा जीवन धारण। इसलिए जो प्राणी नहीं भी बोलते हैं उन्हें भी इंद्रियां उपलब्ध हैं। मनुष्य की बौद्धिक विशेषता का यह असाधारण प्रमाण है कि उसने इन जीवन धारण उपयोगी इंद्रियों से भाषा जैसी आश्चर्यजनक वस्तु का आविष्कार कर लिया, जो उसकी समस्त उपलब्धताओं का साधन बनी। इन इंद्रियों का ज्ञान रखने वाला ही ध्वनि की विशेषताओं और सूक्ष्मताओं को भली भांति समझ सकता है। स्वर का आरोह अवरोह, हर्षता दीर्घता, तारता मंद्रता कैसे संभव होती है, यह शरीर विज्ञान न जानने वाला नहीं कह सकता। उसी गली में सामान्य बोली निकलती है और उसी गली में मन को मुग्ध कर देने वाली संगीत की मधुर लहरी कितना विचित्र यंत्र है वह। जिस प्रकार शब्द के उच्चारण के लिए वागेंद्रियों का ज्ञान आवश्यक है, उसी प्रकार शब्द के ग्रहण के लिए श्रवणेन्द्रियों का ज्ञान, कान के द्वारा ध्वनि किस प्रकार भीतर जाती है, कहाँ टकराती है, कैसे सुनी जाती है अर्थात कैसे उसे अर्थबोध होता है, ये सारी बातें श्रवणेन्द्रिय के निर्माण और कार्य को जानने से ही समझ में आ सकती है। इस तरह स्पष्ट है ध्वनन और श्रवण का ज्ञान शरीर विज्ञान के परिचय के अभाव में संभव नहीं है। तीसरा, भौतिकी और भाषा विज्ञान। वक्ता और श्रोता के बीच कोई संपर्क नहीं होता, फिर वक्ता के ध्वनि श्रोता तक कैसे पहुंचती है? बेतार के आविष्कार को हम आश्चर्य की दृष्टि से देखते हैं, किंतु छोटे पैमाने पर हम प्रतिदिन बेतार से काम लिया करते हैं। अंतर यही है कि बेतार से दूर की ध्वनि सुनाई देती है और बोलते समय हम परस्पर निकट होते हैं, किंतु सिद्धांत की दृष्टि में दोनों में कोई फर्क नहीं। यदि बिना किसी संपर्क सूत्र के ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक निकट में पहुंचाई जा सकती है, तो विस्तार कर देने पर वह दूर के लिए भी संभव है। समीपता और दूरता तो सापेक्ष और गौण बातें हैं। प्रश्न है कि ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती कैसे? मेरे मुख से निकली ध्वनि आपके कर्ण कुहरों तक किस माध्यम से द्वारा पहुंचती है? इस प्रश्न का समाधान भौतिकी करती है। ध्वनि या प्रकाश के संचरण का सिद्धांत भौतिकी द्वारा निर्धारित होता है, जिसे हम मुक्त और शून्य आकाश समझते हैं। इसमें ईथर नाम का एक पदार्थ है जो ध्वनि तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने का काम करता है। वह ईथर क्या है, उस पर ध्वनि तरंगों का संचरण कैसे होता है, ध्वनि की गति कितनी तीव्र है, तो गति की तीव्रता घटती बढ़ती है या नहीं, यदि घटती बढ़ती है तो क्यों, जो ध्वनि यूं थोड़ी दूर के बाद ही नहीं सुनाई देती, वही यांत्रिक सहायता से हजारों मील दूर तक जैसे रेडियो में कैसे सुनी जा सकती है। इन जिज्ञासाओं का समाधान भौतिकी से ही होता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि भाषा के प्रेषण पक्ष का सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए भौतिकी का ज्ञान अनिवार्य है। उसके अभाव में हम ध्वनि के संचरण पर आश्चर्य कर सकते हैं, पर उसका समाधान नहीं कर सकते। चौथा, व्याकरण भाषा विज्ञान। व्याकरण किसी भाषा के तात्कालिक स्वरूप और नियमों के संबंध है, परंतु वह यह नहीं कहता है कि कोई रूप क्यों, कैसे और कब बना। वह केवल भाषा संबंधी क्या का उत्तर दे सकता है, क्यों का नहीं। इसीलिए व्याकरण को विवरणात्मक या वर्णनात्मक भाषा विज्ञान कहते हैं, क्योंकि उसका काम केवल विवरण या वर्णन प्रस्तुत कर देना है। दूसरे शब्दों में इसे यूं कह सकते हैं कि व्याकरण भाषा के निष्पन्न स्वरूप का वर्णन कर विरत हो जाता है, किंतु भाषा विज्ञान उसका कारण भी बताता है। जिस तरह भाषा के नियमों की जानकारी के लिए व्याकरण की आवश्यकता है, उसी तरह व्याकरण के नियमों की जानकारी और व्याख्या के लिए भाषा विज्ञान की आवश्यकता है। व्याकरण का संबंध भाषा विशेष से होता है और उसमें भी काल विशेष से, अर्थात व्याकरण किसी एक भाषा के किसी एक काल में प्रचलित रूपों को नियमबद्ध करता है। इसके प्रतिकूल भाषा विज्ञान का संबंध भाषा मात्र से अर्थात सभी भाषाओं से है और उसके नियम भी व्यापक और अस्थायी होते हैं। व्याकरण भी तुलनात्मक हो सकता है, कहीं दो भाषाओं जैसे संस्कृत और लातिन की तुलना की जा सकती है, किंतु वह तुलना भी भाषा विशेष की ही होगी और साथ ही काल विशेष की भी। तात्पर्य की तुलनात्मक रूप से भी व्याकरण की सीमा बनी रहती है। जैसा ऊपर कहा गया है, व्याकरण विवरणात्मक या वर्णनात्मक होता है, किंतु भाषा विज्ञान व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक होता है, अर्थात वह भाषा संबंधी नियमों और परिवर्तनों में कार्य कारण भाव स्थापित होने का प्रयास करता है। उदाहरणार्थ हिंदी व्याकरण के अनुसार आय शब्द स्त्रीलिंग है, पर व्याकरण यह नहीं बताता कि एक ही धातु और प्रत्यय से निष्पन्न आय शब्द स्त्रीलिंग क्यों हो जाता है, जबकि व्यय पुलिंग है। इसका समाधान भाषा विज्ञान करता है। आय शब्द के लिंग पर फारसी के आमद शब्द का प्रभाव है जो स्त्रीलिंग है। आमद का स्त्रीलिंग में प्रयोग करने वाली जबान ने आय का प्रयोग करना शुरू किया तो पूर्व संस्कार से उसको भी स्त्रीलिंग बना दिया, यद्यपि प्रकृति प्रत्यय की दृष्टि से उसे पुलिंग ही होना चाहिए। जैसा समय उदय अन्वय अत्यय प्रत्यय उपाय आदि में देखा जाता है, इसी प्रकार हिंदी व्याकरण पुस्तक शब्द को स्त्रीलिंग कह देता है पर उसका कारण नहीं बताता। संस्कृत में नपुंसक लिंग पुस्तक शब्द का हिंदी में सामान्यतः पुल्लिंग में प्रयोग होना चाहिए, किंतु अरबी की किताब के प्रभाव स्वरूप पुस्तक शब्द का स्त्रीलिंग में व्यवहार होने लगा। यही कारण है कि भाषा विज्ञान को व्याकरण का व्याकरण कहते हैं, अर्थात वह व्याकरण द्वारा निर्दिष्ट नियमों का सकारण विवेचन करता है। पांचवा, साहित्य भाषा विज्ञान। साहित्य एक प्रकार से भाषा का स्थायी रूप है, इसलिए भाषा विज्ञान के अध्ययन का बहुत महत्वपूर्ण आधार है। जिस भाषा का साहित्य नहीं उसके भाषा वैज्ञानिक अध्ययन का अवकाश भी कम है। उस भाषा का कम से कम ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन तो संभव नहीं ही है। वैदिक, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं का ऐतिहासिक दृष्टि से विकास देखना समझना इसलिए संभव है कि उनमें विस्तृत और संपन्न साहित्य उपलब्ध है, अन्यथा इन भाषाओं की भी वही स्थिति होती जो मुंडा, संथाली या संसार की ऐसी हजारों अन्य भाषाओं की है। सैकड़ों भाषाएं जो भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती थी आज लुप्त हो चुकी हैं और उनका साहित्य न होने से उनके अध्ययन का मार्ग भी अवरुद्ध है। प्राचीन अंग्रेजी में मध्यकालीन अंग्रेजी और मध्यकालीन से आधुनिक अंग्रेजी में क्या अंतर है और वह कब हुआ, इसका विवेचन उपलब्ध साहित्य के आधार पर ही हो पाता है। हमारे यहाँ ऋग्वेद में प्रयुक्त भाषा के पहले भी कोई भाषा रही होगी, किंतु उसका साहित्य प्राप्त न रहने से उसके संबंध में आज कुछ भी कहने में हम असमर्थ हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से ही नहीं तुलनात्मक दृष्टि से भी साहित्य भाषा वैज्ञानिक अध्ययन के लिए पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत करता है। संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, ईरानी, स्लाविक या यूरोप की अन्य भाषाएं जिन्हें आज हम भारत यूरोपीय परिवार में रखते हैं एक ही स्रोत से निकली हैं, यह जानना साहित्य के द्वारा ही संभव हो पाया है। संभव है इस परिवार की और भी भाषाएं विभिन्न स्थानों में प्रयुक्त होती रही हों, किंतु आज उनका कोई साहित्य उपलब्ध न होने से उनके विषय में कुछ भी कहना असंभव प्राय है। तात्पर्य कि भाषा के ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन की सामग्री मुख्यतः साहित्य ही प्रस्तुत करता है। जहाँ साहित्य भाषा विज्ञान के अध्ययन में उपयोगी है वहाँ भाषा विज्ञान भी साहित्य के लिए कम उपयोगी नहीं है। प्राचीन साहित्य में बहुत सारे शब्द ऐसे मिलते हैं जिनका अर्थ आसानी से समझ में नहीं आता। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि एक ही शब्द पहले दूसरे अर्थ में प्रयुक्त होता था और आज दूसरे अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। जैसे असुर शब्द का अर्थ देवता से बदलकर राक्षस हो गया। ऐसे स्थलों का समाधान भाषा विज्ञान की सहायता से सुकर हो जाता है। भाषा विज्ञान ध्वनि परिवर्तन या अर्थ परिवर्तन के कारणों को स्पष्ट कर संदेह का निवारण कर देता है। इतना ही नहीं, भाषा विज्ञान आधार पर साहित्य का विश्लेषण करने के लिए शैली विज्ञान नामक स्वतंत्र शास्त्र का विकास हो गया है, जो निर्विवाद रूप से साहित्य और भाषा विज्ञान के उपकार्योपकारक भाव और अन्योन्याश्रयत्व को सिद्ध करता है। छठा, इतिहास भाषा विज्ञान। इतिहास और भाषा विज्ञान एक दूसरे के लिए बहुत उपादेय और सहायक है। इतिहास के निर्माण में भाषा विज्ञान में बहुत सहायता मिलती है। प्राचीन अभिलेख, शिलालेख, सिक्के आदि के पढ़ने पर ऐसे तथ्य सामने आते हैं जो इतिहास के निर्माण का आधार प्रस्तुत करते हैं या इतिहास की टूटी कड़ियां जोड़ने में सहायक बनते हैं। उदाहरणार्थ उत्तरी सीरिया में प्राप्त हित्ती की कीलाक्षर लेख पट्टियों को पढ़ने के बाद यह निश्चय हो गया कि हित्ती भारत यूरोपीय परिवार की अन्यतम भाषा थी। जब तक वे लेख पट्टियां नहीं मिली थी तब तक न हित्ती के विषय में जानकारी थी और न यही कि वह भारत यूरोपीय परिवार की भाषा है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त अभिलेख अब तक नहीं पढ़े जा सके, इसलिए उनसे सिंधु सभ्यता पर जो प्रकाश पड़ सकता था वह नहीं पड़ सका है। निश्चित ऐतिहासिक उल्लेख के अभाव में भाषा के स्तरों को देखकर यह निश्चय किया जाता है कि कौन रचना किस युग की है। उदाहरणार्थ वेदों, ब्राह्मणों, उपनिषदों का काल निर्धारण बहुत दूर तक उनमें प्रयुक्त भाषा के आधार पर ही किया गया है। इस प्रकार हमने देखा कि भाषा विज्ञान इतिहास का उपकारक है, किंतु इतिहास ही भाषा विज्ञान के लिए कम उपयोगी नहीं है। भाषा विज्ञान की अनेक समस्याओं का समाधान इतिहास से ही होता है। उदाहरणार्थ हिंदी में अरबी, फारसी या अंग्रेजी शब्दों के बाहुल्य का कारण इतिहास ही बताता है। शताब्दियों और व्यापारिक संपर्क और राजनीतिक सत्ता के कारण ये शब्द आए, यह हम इतिहास से ही जानते हैं। ऐसे ही अंग्रेजी भाषा में लातिन या फ्रांसीसी शब्दों के आधिक्य का कारण इंग्लैंड पर बहुत दिनों तक रोमनों और नॉर्मनों का प्रभुत्व है। फारसी आर्य परिवार की भाषा है और अरबी सामी परिवार की, दोनों में कोई संबंध नहीं है, किंतु 7वीं शताब्दी के बाद ईरान अरबों द्वारा पराजित हुआ और सारा देश इस्लाम कबूल करने को बाध्य हुआ। इस राजनीतिक और धार्मिक विप्लव के कारण फारसी में अरबी के हजारों शब्द आ गए। यद्यपि साहित्यिक दृष्टि से अरबी की अपेक्षा फारसी कहीं उत्कृष्ट थी, हिंदेशिया की भाषा में बहुत सारे शब्द संस्कृत के हैं, जो इस बात के सूचक हैं कि किसी दिन वहाँ तक संस्कृत का प्रभाव था। जो बृहत्तर भारत के इतिहास से परिचित हैं, वे जानते हैं कि कहीं वह भाग भारत का उपनिवेश था। यह जान लेने पर हिंदेशिया की भाषा में संस्कृत शब्दों के बाहुल्य का समाधान अनायास हो जाता है। 7वां, भूगोल भाषा विज्ञान। जिस प्रकार इतिहास से भाषा विज्ञान का निकट संबंध है, उसी प्रकार भूगोल से भी। क, संसार की हजारों भाषाओं का सीमा निर्धारण भूगोल की सहायता से ही किया जा सकता है। यदि भूगोल का ज्ञान न हो तो किस भाषा की सीमा कहाँ तक मानेंगे, यह कहना कठिन है। जहाँ भाषाओं की सीमाएं बहुत थोड़ी दूर पर बदलती हैं, वहाँ तो यह कार्य और भी कठिन हो जाता है। सीमावर्ती भाषाओं में दो दो तीन तीन भाषाओं के लक्षण दिखने लगते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें किसके अंतर्गत रखें, यह निर्णय करने के लिए जहाँ भाषा वैज्ञानिक साधनों को काम में लाया जाता है, वहाँ भौगोलिक स्थिति को भी ध्यान में रखना पड़ता है। ख, किसी देश की जलवायु का प्रभाव वहाँ के निवासियों के शरीर पर और शरीर का प्रभाव भाषा के उच्चारण पर पड़ता है। ठंडे देशों में रहने वालों के उच्चारण की अस्पष्टता का कारण यह बताया जाता है कि अधिक ठंड के कारण उन्हें मुंह खोलने में कठिनाई होती है, अतः वे ध्वनियों का उच्चारण साफ साफ नहीं कर पाते। इसके प्रतिकूल गर्म देशों में रहने वाले आसानी से मुँह खोल पाते, स्वभावतः उनका उच्चारण अपेक्षाकृत स्पष्ट होता है। अंग्रेजी में अनेक ध्वनियों पर स्खलित होती हुई जीभ कुछ ही ध्वनियों का स्पष्टता से उच्चारण कर पाती है और अनेक ध्वनियां लुप्त सी हो जाती हैं। इसका कारण उस देश की अतिशीत जलवायु हुई है। ग, किसी भाषा का दूर तक विस्तार क्यों होता है और कोई भाषा छोटी सीमा में ही क्यों घिरी रह जाती है, इसका समाधान भी भूगोल ही करता है। आवागमन की सुविधा और आबादी की सघनता के कारण समतल मैदान में भाषा के दूर तक फैलने का अधिक अवकाश रहता है। हिंदी के व्यापक प्रसार का कारण इस भूभाग का समतल होना भी है। इसके प्रतिकूल दुर्गम पर्वतों, वनों और मरुभूमियों में भाषा के विस्तार का अवकाश कम होता है, क्योंकि न तो वहाँ के निवासी आसानी से बाहर जा सकते हैं और न बाहर के लोग वहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। घ, इसी कारण ऐसी भाषाओं में परिवर्तन भी कम और मंद गति से होता है। बिहार के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली मुंडा, संथाल आदि जातियों की भाषा में हिंदी, बंगला आदि की अपेक्षा अधिक स्थिरता है, क्योंकि उनका बाहर के लोगों से संपर्क नहीं रहा है। अब धीरे धीरे संपर्क बढ़ने से परिवर्तन की संभावनाएँ भी बढ़ गई हैं। दुर्लभ नदियों से विभक्त भूभाग के भाषाओं में दूरी कम होने पर भी अधिक अंतर दिखता है, क्योंकि एक तट के निवासियों का दूसरे तट के निवासियों से संपर्क सुगम नहीं होता, परंतु मैदान में बहुत दूर तक विभाषा का रूप अपरिवर्तित रह जाता है। इससे स्पष्ट है कि भाषा के निर्माण, परिवर्तन और प्रसार का भूगोल पर प्रभाव पड़ता है। अंग, बहुत सारे शब्दों के अर्थ पर भी भूगोल का प्रभाव दिखाई देता है। उदाहरणार्थ, केसर को संस्कृत में काश्मीर कहते हैं, जो स्पष्ट है इस बात का सूचक है कि केसर की उपज आरंभ में कश्मीर में होती थी। आज भी केसर उस सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सका है। संस्कृत में उड़द नाम का एक नाम कंबोजी है, जो इस बात की ओर इंगित करता है कि वह पहले पहल कंबोज से आया। भारत के पूर्ववर्ती प्रदेश का नाम असम इसलिए पड़ा कि वहाँ की भूमि पहाड़ी होने से सम नहीं है। ये रोचक उदाहरण भाषा के विकास में भूगोल के प्रभाव को निर्भ्रांत रूप में व्यक्त करते हैं। 8वां, मानव विज्ञान भाषा विज्ञान। जैसा नाम से ही स्पष्ट है, मानव विज्ञान मानव की उत्पत्ति और विकास का विवेचन करता है। बनावट के अनुसार मानव जाति के कितने भेद हैं, उनका विस्तार कैसे हुआ, उनकी क्या विशेषताएं हैं आदि बातें मानव विज्ञान में निरूपित होती हैं। मनुष्य आदिम अवस्था से अब तक कैसे पहुंचा, इस विकास क्रम में उसके रहन सहन, भाषा, कला आदि का उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, यह हम मानव विज्ञान के द्वारा जानते हैं। मनुष्य के विकास में उसकी भाषा का भी महत्वपूर्ण योग है, यह कहना पुनरुक्ति मात्र होगा। मनुष्य का विकास दो प्रकार का होता है, एक तो प्राकृतिक और दूसरा सांस्कृतिक। उसके सांस्कृतिक या संस्कार जन्य विकास में भाषा का बहुत बड़ा हाथ है। मानव विज्ञानी सुदूरवर्ती आदिम सभ्यता का अध्ययन करना चाहता है और उस प्रसंग में उसे ऐसी भाषाएं मिलती हैं जो अज्ञात या अनधीत हो सकती हैं। जब तक वह उन भाषाओं का अध्ययन नहीं कर लेगा तब तक उसके निष्कर्ष संदिग्ध बने रहते हैं। यहाँ भाषा विज्ञान मानव विज्ञान की सहायता करता है। बदले में मानव विज्ञान भी ऐसी सामग्री देता है जो किसी भाषा के रहस्यपूर्ण गुत्थियों को सुलझाने में सहायक हो सके। प्रजाति और भाषा का कोई संबंध है या नहीं, प्रजाति सम्मिश्रण का भाषा के विकास में क्या महत्व है, ऐसे अनेक प्रश्नों का समाधान मानव विज्ञान की सहायता से ही किया जा सकता है। भाषा का संबंध मानव से है और मानव के अध्ययन का प्रसार जिस शास्त्र में होगा वह भाषा विज्ञान के निकट आ जाएगा। नौवां, समाज विज्ञान और भाषा विज्ञान। समाज विज्ञान में समाज का अध्ययन होता है, अर्थात सामाजिक प्राणी के रूप में मनुष्य के आचार विचार व्यवहार आदि का विश्लेषण किया जाता है। व्यक्ति और समाज का संबंध, व्यक्ति पर समाज का प्रभाव, समाज के निर्माण में व्यक्ति का प्रभाव आदि विषयों की चर्चा समाज विज्ञान में है। भाषा भी सामाजिक संपत्ति है, वह समाज में ही उत्पन्न और समाज में ही विकसित होती है। मनुष्य के आचार विचार आदि में भाषा का कभी प्रत्यक्ष और कभी अप्रत्यक्ष प्रभाव रहता है। इस तरह भाषा विज्ञान समाज विज्ञान के बहुत समीप आ जाता है। निरक्षर रसोइयों को भी पंडित जी क्यों कहते हैं, नेस्व अधिकारहीन क्षत्रिय भी ठाकुर या बाबू साहेब क्यों कहलाता है, यह उनके पूर्व उत्कर्ष का स्मारक है जो उनके अतीत पर प्रकाश डालता है। ब्राह्मण किसी दिन पंडित हुआ करते थे और क्षत्रिय किसी दिन ठाकुर। आज दोनों ज्ञान और अधिकार से वंचित हो गए हैं, फिर भी पुराने नाम ढोए जा रहे हैं। भाषा के से समाज व्यवस्था का बहुत दूर तक नियमन होता है। सामान्य शिष्टाचार से लेकर क्रांतिकारी परिवर्तन तक भाषा के द्वारा ही संपन्न होते हैं। हिटलर की वक्मिता ने जर्मनी की जनता में युद्धोन्माद भर दिया, जिसके कारण द्वितीय महायुद्ध हुआ। जिन्ना और अन्य मुस्लिम लीगी नेताओं के धर्मांधता उभारने वाले नारों और भाषणों के कारण भारत का विभाजन हो गया और देश में जो खुरेजी और बर्बादी हुई वह अलग। भाषा के द्वारा समाज की गतिविधि को बहुत दूर तक नियंत्रित किया जा सकता है, यह युद्ध या क्रांति के समय स्पष्ट हो जाता है। समाज विज्ञान और भाषा विज्ञान दोनों मानव जाति से ही संबद्ध है। अंतर यह है कि समाज विज्ञान का क्षेत्र अधिक व्यापक है, उसमें सामाजिक दृष्टि से मनुष्य के समस्त क्रियाकलाप को, जिसमें भाषा भी है, विश्लेषण किया जाता है। भाषा विज्ञान केवल भाषा तक सीमित है, यह अंतर मुख्यतः मात्रा का ही है, अन्यथा दोनों समाज सापेक्ष हैं। दसवां, दर्शन और भाषा विज्ञान। भाषा का विशेषतः अर्थ विज्ञान का दर्शन से गहरा संबंध है। यूरोप में भाषा संबंधी जिज्ञासा का आरंभ दर्शन से ही हुआ। ग्रीस में सबसे पहले भाषा का विवेचन दार्शनिकों द्वारा किया गया। भारत में भी व्याकरणों का स्फोटवाद, बौद्धों का अपोहवाद, न्यायिकों का जातिवाद, मीमांसकों का शब्द नित्यत्ववाद आदि सिद्धांत दर्शन पर ही आश्रित हैं। वाणी के चार प्रकारों परा, पश्यंत, मध्यमा और वैखरी का आधार भी दार्शनिक ही है। जहाँ उन दर्शनों ने अर्थ पर अधिक ध्यान दिया है, वहाँ तंत्र ने शब्द पर। वर्णों के विशिष्ट विन्यास और उनसे अनेक प्रकार के अतिलौकिक प्रभावों की कल्पना तंत्र शास्त्र में मिलती है। योग में भी विशेषतः षट चक्रों की चर्चा के प्रसंग में वर्णों पर बहुत कुछ कहा गया है। शब्द और अर्थ की यह चर्चा यद्यपि आधुनिक भाषा विज्ञान की सीमा से बहुत दूर तक नहीं आती, तथापि वह सर्वथा निरुपयोगी है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार संक्षेप में हमने देखा कि भाषा विज्ञान का ज्ञान की दूसरी शाखाओं से क्या संबंध है और वे एक दूसरे के अध्ययन में कहाँ तक सहायक हो सकती हैं। भाषा विज्ञान को पूरी तरह समझने के लिए उन सभी विषयों का थोड़ा थोड़ा बहुत ज्ञान आवश्यक है।